ये बताइएगा कि हम ये जानते हैं पूरी दुनिया में जिन लोगों पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगता है उनको पकड़ के हुकूमत खानों में जेलों में रखा जाता है। महज़ब कौमों की मिसालें भी हमारे सामने हैं, ग्वांतानामो बे हो, अबू गुरैब जेल हो, तशद्दुद किया जाता है कैदियों पर, तशद्दुद। इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ, इल्ज़ाम के सबूत के मराहिल में, इंटरोगेशन के प्रोसेस में हुकूमत खानों में रख के, टॉर्चर सेलों में रख के मारा जाता है, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसी तरीके से घर वालों से दूर रख के, कभी कभी तो उठाकर जबरन गुम कर दिया जाता है, और जहनी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। ये मुझे बताइएगा, तशद्दुद किसी शख्स के ऊपर अगर होता है, उसको उठा के लेके जाते हैं लोग, मारते हैं, पीटते हैं, दीनी लिहाज से ही कैसा?
ये कोई आम फर्द करे तब भी एक बदतरीन जुर्म है, अगर रियासत के इदारे करें तो ये बदतरीन से भी आगे कोई लफ्ज़ हो तो इस्तेमाल करना चाहिए। ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकी उसूल इसकी इजाज़त देते हैं। हमारे दीन में तो आप जानते हैं कि ये ऐलान किया गया है कि इंसान की जान, माल और आबरू को हुरमत हासिल है, और रसूलुल्लाह सल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ये फरमाया था कि ये जानते हो ये हुरमत किस दर्जे की है, ये शहर जिसमें तुम खड़े हो, ये महीना ज़ुलहज का महीना था ना, हज का महीना है, ये महीना जिसमें तुम इस वक्त मेरे मुखातब हो, जैसी हुरमत इन चीज़ों को हासिल है, इस शहर मक्का को हासिल है, जिस तरह ज़ुलहज के महीने को हुरमत हासिल है, जिस तरह कि ये हरम तुम्हारे सामने है, इंसान की जान और माल और आबरू को भी ऐसी हुरमत हासिल है। यानी उसमें एक एक को अलग करके बयान किया, तो किसी इंसान की जान के ख़िलाफ़, किसी की इज़्ज़त आबरू के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है कि जब आप किसी को मारते हैं या गाली देते हैं तो उसकी तज़लील करते हैं, ये उसकी आबरू पर हमला है। तीनों चीज़ों की यकसा हुरमत है, वो तो किसी को हक़ नहीं है। इसमें ये शर्त लगा दी गई है जगह जगह कि इल्ला बिल हक़, यानी अब कायदे कानून के मुताबिक कोई सज़ा देनी है तो पहले फ़ैसला होगा, यानी ये मालूम होगा कि जुर्म हुआ है, जुर्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर अदालत में मुकदमा जाएगा। अदालत में मुकदमा जाएगा तो अदालत मुतय्यन तौर पर बताएगी कि ये जुर्म हुआ है और इसकी ये सज़ा लिखी हुई है। वो सज़ा कोई जिस्मानी तादीब भी हो सकती है, वो जुर्माना भी हो सकता है, या कोई और सज़ा भी हो सकती है। तो जब तक अदालत की तरफ से ये फ़ैसला नहीं हो जाता, यानी इल्ला बिल हक की शर्त पूरी नहीं हो जाती, किसी पुलिस वाले को, किसी फ़ौज के आदमी को, किसी एजेंसी के आदमी को, किसी शख्स को कोई हक़ नहीं है कि वो एक उंगली भी किसी को लगाने की जसारत करे। अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें हुरमत के ख़िलाफ़ इकदाम हुआ है। और ये बात याद रखिए कि अगर हुरमत तोड़ी जाएगी या फ़र्ज को तर्क किया जाएगा तो ये कबीरा गुनाह होता है, सगीरा नहीं होता ये। तो इस वजह से हमारे दीन में इस तरह की हरगिज़ हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। अदना दर्जे में भी इसमें किसी शख्स को ये जसारत नहीं करनी चाहिए, और आप जानते हैं कि ख़ुद कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता।
ये पूछा गया है कि अगर एक दुश्मन मुल्क का जासूस पकड़ा जाए, और गुमाने गालिब तो यही है कि इसके पास कुछ पोशीदा राज होंगे अपनी आवाम के तहफ़ के लिए, अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए, उससे वो राज उगलवाने चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत में तो वो कभी भी नहीं बताएगा। और एक और बात भी एक पुलिस वाले साहब ने पूछी, उन्होंने कहा जब हम किसी को पकड़ते हैं हल्का सा हमें शक शुबा होता है तो वो तो कोई भी मुजरिम दुनिया का ये मानते नहीं कि भी मैंने किया, वो थोड़ी सी परेड होती है चित्रौल तो उसके बाद ही मानते हैं वो सारे।
ये हमारे यहाँ के लोगों का ख्याल है, उनको अच्छा मुताला करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मौजूदा ज़माने में मुजरमों से मामला करने के लिए उलूम कितनी तरक्की कर चुके हैं, कितनी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, कितने मेथड हैं जो अब बाकायदा आजमाए जा चुके हैं। तो अपना इल्म बढ़ाएं, ये आसान तरीका है, और इसमें जो मुश्किलात पेश आती हैं उसका आप अपने कानूनी निज़ाम में ज़रा जायज़ा लें। यानी वहाँ आप मारपीट के कोई बात कह लेते हैं, उसके बाद जैसे ही मुजरम या मुलज़म वो अदालत में जाता है तो इनकार कर देता है, क्या हासिल होता है उसका? कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी यहाँ जो जी चाहे बयान ले लीजिए, उसकी कोई अदालती अहमियत नहीं होती, ये दुनिया भर के कानून में है। आप एक जुर्म का इर्तकाब भी करते हैं, आप अल्लाह ताला की हदूद को भी तोड़ते हैं, और नतीजा भी कुछ हासिल नहीं होता। तो जो जासूस और दूसरे लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ दुनिया भर में मामला किया जाता है, तो उसमें ये मारना पीटना कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ लोग इसको आसान तरीन तरीका चूँकि समझते हैं, तो उनका ख्याल है कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। इंसान को नफसियाती तौर पर मगलूब करने, चीज़ें उससे उगलवाने, ایسی صورت پیدا کر دینے کہ وہ ایک بات بیان کرے. اس کے راستے طریقے جدید دور میں جدید تمدن میں بہت کچھ ایجاد ہو چکے ہیں. دنیا کافی آگے بڑھ گئی, ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ کچھ اپنا مطالعہ بڑھائیں, علم حاصل کریں. یہ اپنی جگہ ایک فن بن چکا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں جائیں اور سیکھیں.
ٹھیک, اچھا ہم سے بتائیے گا, بسا اوقات یہ جو بڑے پولیس افسران ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں اور ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت سنگین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا, بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے, آپ نے کسی کا قتل ثابت کرنا ہے تو ہمارے عدالتی نظام میں تو اعلی قتل برآمد کرو, جائے وقوع پہ کون لوگ تھے, شہادتیں, یہ وہ کہتے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ باہر نکل کے پھر بندے مارے گا. تو ہمارے یہاں فیک انکاؤنٹرز پوری ایک تاریخ ہے پاکستان میں, تو اس میں عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی عوام کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے, ورنہ جرم اس سطح پہ ثابت نہیں ہو سکتا, پھر تیار رہو, آ کے پھر یہ مار پیٹ کرے گا.
اس کا بھی علاج یہ نہیں ہے, یعنی اس ذریعے سے آپ اصل میں لائسنس دے رہے ہیں. آج وہ اس مقصد سے یہ کام کریں گے, کل اپنے مقاصد کے لیے یہی کام کریں گے. غیر قانونی راستے جب لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں تو وہ کبھی آپ کے حدود میں نہیں رہتے, وہ پھر اپنی مرضی سے راستہ نکالتے ہیں. یہی تجربہ ہم نے بعض لوگوں کو جہاد کرا کے کیا ہے, اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں بھی صحیح اصول, صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قانونی نظام کو بہتر بنائیں. یعنی یہ کسی حکیم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے جو نظام اختیار کیا اس وقت برطانوی طرز کا, وہ برطانوی معاشرے کے لیے بہت موزوں ہوگا, ہمارے معاشرے کے لیے موزوں نہیں ہے. یہاں ہمارا جو قدیم نظام تھا وہ زیادہ بہتر تھا, اور اب بھی دنیا کے بہت سے متمدن ممالک میں وہی نظام ہے. تو آپ جج کو بھی کچھ اختیارات دیتے ہیں, آپ اسی طریقے سے استغاثہ کے لیے بھی کچھ نئے راستے نکالتے ہیں, وہ اس طرف بھی غور کریں. یہ میں نے پھر عرض کیا کہ آسان طریقے ہیں کہ آپ غیر قانونی راستہ اپنائیں اور اس کے نتیجے میں آپ کہیں آپ نے بڑا اچھا مقصد حاصل کر لیا, لیکن وہ پھر آپ کے لیے کوئی بند نہیں بن سکیں گے, آپ ادھر جانا چاہے گا جائے گا.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, یہ جو کل آپ نے غام صاحب ایک اصول بیان کیا تھا, مثلا دین نے کہا ہے کہ انسان کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے, تو یہ تو ایک اصول ہے, لیکن ایک شخص جو مجرم ہے, مطلب ہمارے پاس کیا کوئی روایت ہے, کوئی ایسا اطلاقی فیصلہ بھی دین کا ہے کہ جی جب آپ کسی کو پکڑ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس پہ تشدد نہیں کرنا؟ یعنی وہ تو انٹروگیشن کا ایک پروسیس ہے, تھوڑا سا بعد میں معافی مانگ لیں گے کہ تھپڑ وپڑ مار دیے دو چار کو.
کیا بات ہوئی, یعنی جو جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے اور جس کو حضور نے اس شدت کے ساتھ بیان کیا اور قرآن بھی بیان کرتا ہے, تو وہ آپ کے لیے اٹھ کیسے گئی؟ یعنی اس کے لیے بھی کوئی اطلاقی اصول چاہیے. جب ایک مرتبہ ایک بات بیان کر دی گئی اور اس شان کے ساتھ بیان کی گئی, یہاں تک کہ آخری خطبے میں بھی خاص طور پر جو بات کہی گئی وہ یہی کہی گئی, تو اب اس کے بعد کیا مزید کہنے کا رہ جاتا ہے باقی؟ یعنی اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طریقے سے بتایا جائے کہ آپ کے تھپڑ مارنے کی یہ مقدار مقرر کر دی گئی ہے, بالکل احمقانہ بات ہے.